జయ శ్రీ ఓం నమ సిద్ధేభ్య నమో అర్హంతాళం నమో సిద్ధాళం నమో ఆయుర్యాళం నమో వజ్రాయాళం నమో లోయే సవ్వసాహూణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణీ మంగళం కుందకుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వకల్యాణకారకం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం. త్వయి సతి పరమాత్మన్ మాద్రశాన్ మోహముగ్ధాన్ కథమతనువశత్వాన్ బుద్ధకేశాన్ యజేహం సుగతమగధరం వా వాగధీశం శివం వా జితభవమభివందే భాసురం శ్రీజినం వా రమ్యోణజిణం వీరం అనంతవర్ణానదంశనసహావం వోచ్ఛామి నియమసారం కేవలి సుద కేవలి వణిదం.
నియమసార పరమాగమ శాస్త్ర యహాం విరాజమాన్ హై ఉస్మే పరమ భక్తి అధికార प्रारंभ हुआ है. उसका श्लोक नंबर 220 जो गाथा 134 के बाद में आया उस पर अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल व्याख्यान सुना है. आप लोग तो उनके नियमित श्रोता हैं ही, इसलिए आपके सामने ज्यादा महिमा की क्या बात कही जाए. ये खुराक तो हिंदी भाषी क्षेत्र में ज्यादा जरूरी है कि उनको गुरुदेव के नाम पर कोई कोई को ऐसा लगता है कि एक अलग ग्रुप है कि अलग पंथ है, इन लोगों का नया धर्म है. तो वो लोग तो इससे दूर ही रहते, यूं समझ वो अपने को दिगंबर ही नहीं मानते. नए कहान पंथ के नाम से मानते हैं. अपने जो विराग शास्त्री है ना, विराग शास्त्री, उन्होंने मुझे बताया कि एक वेबसाइट पर, कि पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी, उसमें जैन धर्म के जुदे जुदे जो ब्रांचेज हैं उनका लिस्ट दी थी, तो उसमें एक कहान पंथ भी था. तो गजब हो गया. लेकिन अपन सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस शताब्दी में, इस युग में मूल दिगंबर धर्म को जिनवाणी की, विशेषतया परमागम शास्त्रों की एक एक पंक्ति का रहस्य किसी ने अगर खोला है तो वो गुरुदेव श्री ने खोला है. इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि असली दिगंबर तो हम ही हैं. मेरी बात डॉक्टर साहब दूसरी जगह पहुंचा सकते अच्छी तरह से. आप देखिए एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को कितना अंदर डूबते हुए उसको समझने की जरूरत बताते हुए, बीच में निगोद दशा, पंच परावर्तन, कहां कैसा नहीं समझा आज तक ये जीव, तो कहां किस तरह से 66,336 भव एक अंतर मुहूर्त में करता है, तो क्या जीव की दशा है आज तक हुई और अवसर चूक गया तो आगे भी ऐसी ही चलेगी. मतलब ये वास्तव में जब अपन कहते ना, करुणा अकारण सुमेघ तने नमू, ये करुणा अकारण, माता की जो बालक के ऊपर करुणा होती है वो अकारण नहीं होती, वो सकारण होती है. उसने उसको 9 माह पेट में रखा है, उसको जन्म दिया है तो वो उसका अंश है। तो बच्चे के प्रति जो वात्सल्य है, प्रेम है, राग है, वो मेरा बच्चा है इस मान्यता के आधार पर है, इसलिए वो अकारण करुणा नहीं है। ध्यान में क्या में आया? अकारण करुणा तो संतों की होती है, ज्ञानियों की होती है। बस राग आए बिना रहता नहीं, पूर्ण वितराग नहीं हुए, इसलिए ये तत्व ज्ञान का रहस्य सब जीव समझें, ऐसा राग आए बिना रहता नहीं। ये तो गुरुदेव को क्या रिटर्न चाहिए था, अपने से, श्रोताओं से, भक्तों से क्या रिटर्न चाहिए था, उन्हीं को एक करुणा थी कि इस समझे समझे। तो इस तरह ये एक अद्भुत उपलब्धि है, ये हमारी बड़ी संपत्ति है। ये जो 9000 प्रवचन हैं, इसका वो अपनी स्तुति में बोलते हैं ना, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। तो कुंद सूत्र कहोगे गुरुदेव की वाणी, वो कुंद सूत्र की ही वाणी है, तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं। तो अब्जों की कीमत हो के हजारों अबज की कीमत हो, तो उसके कोई पैसे से कोई संबंध है ही नहीं जड़ रत्नों से। ऐसी बात है। दो चार बिंदुओं पे अपन चर्चा करते हैं। पेज नंबर 207 सबसे नीचे एक इसमें विशेष बात आई जो मूल टीका में है। निज परमात्म तत्वना सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामोनु जे भजन, उस पर गुरुदेव ने काफी विस्तार किया। आश्चर्य की बात है कि भजन तो निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा का होना चाहिए, व्यवहार से पंच परमेष्टि का होना चाहिए, तो पर्याय का भजन, और फिर गुरुदेव उसका खुलासा करें, जबकि वो तो पज्जे मूड़ा पर समया पर्याय में जी मूड़ छे थे पर समय छे, एक समय की पर्याय को अपना स्वरूप जानता है, ये मिथ्यात है, अज्ञान है। यानी पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव के गीत गाने वाले गुरुदेव पर्यायनु भजन इस शब्द की व्याख्या करते हैं, तो इससे हमें समझना चाहिए गुरुदेव के चिंतन में कितना बैलेंस है। उसको उड़ाया नहीं उन्होंने, कहा आ तो व्यवहार नहीं बात छे, आ तो व्यवहार नहीं बात छे, ऐसा उड़ाया नहीं उन्होंने। उन्होंने उसका मर्म खोला। बाद में एक क्वेश्चन आया है, तब मैं उसकी बात विस्तार से करूंगा। यहां तो केवल अर्थ बताना है। परिणामोनु भजन सबसे नीचे की पंक्ति 207 सबसे नीचे की पंक्ति, परिणामोनु भजन परिणाम ही न कहूं, ये भी उन्हें ज्ञान करा दिया। खरेखर तो दृष्टि नो विषय तो अपरिणामी छे, परिणामी पण नथी। क्या कहा है? अपरिणामी वो है ना अपने 320 गाथा का, सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अखंड एक निज परमात्म द्रव्य ते हूं छू ज्ञाता पुरुष एम भावे छे। तो गुरुदेव ने कहा भैया परिणामों के भजन का मतलब ओ रूपे प्रणमन करना, यही सबसे बड़ी भक्ति। देखो अपने लौकिक जीवन में भी ये शैली अपनाई जाती है, लोक व्यवहार में। मान लो गांधी जी की जयंती है और स्कूल में कोई फंक्शन गांधी जी की जयंती का हो रहा है, तो जो भी वक्ता आएंगे, अच्छे प्रबुद्ध चिंतक आएंगे, वो बच्चों के सामने क्या बोलेंगे? अकेली गांधी जी की मूर्ति लगा देना, अकेला गांधी जी की जय बोलना, उससे कोई गांधी जी की हम जयंती नहीं मना सकते हैं, हम तो गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चले हैं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और जब सुभाष जी की जयंती होगी तो बोलेंगे हम सुभाष जी के बताए हुए मार्ग पर चले हैं। अभी गांधी जी की स्टाइल दूसरी थी, सुभाष जी की स्टाइल दूसरी थी, एक गरम दल वाले थे एक नरम दल वाले थे, हमको इससे क्या मतलब? अपन तो साधवादी हैं, सुभाष जयंती के दिन सुभाष जी के मार्ग पर चलेंगे, गांधी जयंती के दिन गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे। मेरे को इतने कहने ये जगत का व्यवहार है सर। वो भी कहता है कि उस मार्ग पर चलना ये भक्ति है, ये कहना है, हैं? इसी तरह से रत्नत्रय परिणामोनु भजन, ये परम भक्ति अधिकार है ना, परम भक्ति अधिकार। इसलिए आचार्य देव ने जिनेन्द्र भगवान ने जो मुक्ति का मार्ग रत्नत्रय स्वरूप बताया, वो मार्ग रूपे परिणमन करना यही भक्ति है, यही पूजा है, यही स्तवन है, यही आराधना है, सब कुछ यही है। बाकी व्यवहार में तो पूजा का अर्थ कोई जुदा होता है, भक्ति का अर्थ कोई जुदा होता है, वो सब क्रिया प्रधान फर्क है। भाव प्रधान में तो अकेला एक उस रूप परिणमन होना। इसलिए इस पूरे प्रवचन में गुरुदेव श्री ने कई बार ये कहा कि श्रावक ने पण एम होय छे, श्रावक अंत में कहा ना, श्रावक हो के संयमी, संयमी यानी पूर्ण संयमी मुनिराज, श्रावक हो के मुनिराज हो, सब इस प्रकार की भक्ति करते। तो ये देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान अने अंदर रमणता एनु भजन करवू, एटले एकाग्रता करवी, एनु नाम भगवान नी भक्ति छे। अपन को लगता है ऐसा है कि अपन कोई बाह्य क्रिया, अपन लोग भी दूसरों की तो क्या बात करना, मित्र पक्ष की तो क्या बात करना, अपना पक्ष दो चार क्रिया हो गई पाठ, सब हम और आप सब इसमें शामिल हैं। कोई हम यहाँ बैठ के आपको उपदेश देते हैं तो हम कोई न्यारे हो गए, ऐसा नहीं है, है? कोई क्रिया विशेष न करे, कोई पाठ विशेष न भूले, जब तक ऐसा लगता कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये रह गया, भले अपन ये कर पाए कि नहीं कर पाए, सुनना ध्यान से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन हो या ना भी हो, अभी तो नहीं है ना, तो भी फील तो होवे कि असली भक्ति वो है जो अभी हम नहीं कर पा रहे। और हमारे ये जो रूढ़ी वाली व्यवहार भक्ति है, इसका भी एकमात्र प्रयोजन वो असली भक्ति प्रकट करने का है। ये व्यवहार परमार्थ का प्रेरक, परमार्थ का पोषक, श्रीमत का है, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। भगवान नी भक्ति अने जात्रा बात्रा बधो राग छे, ए कई धर्म भरम नथी, ए शुभ राग छे। नेक्स्ट पेज है, ए शुभ राग छे। अभी देखना, अशुभ राग थी बचवा शुभ राग आवे छे, पण ए धर्म नथी। अभी इसमें आप गुरुदेव की जो उनको थिंकिंग स्टाइल है वो देखिए। उन्होंने ये नहीं करना चाहिए कि ये छोड़ देना चाहिए, कि जो सामने वाले कहते हैं कि ये लोग भक्ति पूजा छोड़ाते हैं, ये लोग शुभ भाव छोड़ाते हैं, पुण्य को हे बताते, ये कहाँ आया? उन्होंने तो खाली इतना कहा कि ये जो शुभ भाव आता है पण ये धर्म नथी। आगे कुछ में एक आध दो पेज बाद शायद उन्होंने वो भी लिया है, पंचाष्टी काय का, अशुभ वंचनार्थम, अशुभ से बचने के लिए। इसी तरह बीच का पैराग्राफ में भी है, अहियां तो कहे छे कि शुद्ध रत्नत्रय परिणामोनु जे भजन ते भक्ति छे आराधना छे एवो तेनो अर्थ छे। बस यही बात, रत्नत्रय परिणामनु भजन। अभी यहां आया ये जो मैं अभी बात छेड़ी 209 पर, बीच में मुमुक्षु का प्रश्न है 209। आत्मानी भक्ति करे छे के पर्यायनी भक्ति करे छे? जबकि टीकाकार मुनिराज का तो यही समझ लो शब्द है कि रत्नत्रय परिणामनी भक्ति। अभी गुरुदेव ने जो उनकी मूल बात है, वास्तव में जिसके लिए गुरुदेव श्री ये भरत क्षेत्र में पधारे, पता नहीं किसका मैसेज गया होगा है साहब यहाँ तो बड़ी गड़बड़ थी गई छे, लोग क्रिया कांड में ही धर्म मान रहे हैं और आप यहाँ पधार जाओ है। कभी कभी तो मैं बहुत अलंकारिक भाषा में रूपक ऐसा सोचता हूँ कि जैसे गुरुदेव जब अभी स्वर्ग गए होंगे तो उनको सबसे पहले क्या विचार आया होगा, ये मेरी कल्पना है, कोई शास्त्र की बात नहीं है। उन्हें सोचा होगा कुंदकुंदाचार्य को देखें वो कहां पर है, तो अवधि ज्ञान लगाया होगा, उनको कुंदकोंदाचार्य कहां बैठे हैं तो उनको देखने के लिए जावे। तो जैसा अपने दिमाग में इमेज है, अपन ने फोटो बना रखा है, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गुफा के सामने हैं, नग्न दिगंबर हैं, शास्त्र लिख रहे, तो वैसे तो मिलेंगे नहीं अभी है, फिर वो तो न जाने कितनी देवांगनाओं के साथ में बैठे होंगे, क्या होगा। अरे आज यद्दिन माली मेरु की पूजा की ना अपन ने, तो उसकी जयमाला में एक बहुत मजेदार बात आई। पूरी जयमाला में वो देव लोग वहां जाके कैसा नृत्य करते हैं और कैसी भक्ति करते हैं उसी का वर्णन था जयमाला में। तो उसमें क्या आया, मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि कवि जो है इंद्राणी नाचती है और इंद्र ताल बजाता है, मतलब ढोलक इंद्र बजा रहा है और इंद्राणी नाच रही है, और कभी इंद्र नाचता है और वो इंद्राणी को भी नचाता है, ऐसे उसमें जयमाला में विद्युन माली मेरुपुर की जयमाला में। तो वहां तो ये माहौल होगा, वहां तो ये वातावरण होगा। तो खैर ठीक है, गुरुदेव ने जान लिया कि ये जो देव बैठा है ना, यही पहले वहां कुंदकुंदाचार्य था, ऐसा उनने अवधि ज्ञान से जान लिया। पर अभी उन लोगों में क्या डायलॉग हुआ होगा उसकी एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। दो बच्चों को, एक को गुरुदेव का देव बना करके, गुरुदेव का आत्मा का देव पर्याय में खड़ा करके, मुकुट मुकुट लगा के, और एक बच्चे को थोड़ा सीनियर बड़ी उम्र का, उसको कुंदकुंदाचार्य बना के, फिर दोनों का डायलॉग हुआ। उनका साहब बोले तमे कौन छो, पता नहीं गुजराती बोलेंगे कि हिंदी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उधर पे है, कौन हो भाई, कहां से आए हो? अरे मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूं। क्यों, मेरे में ऐसी क्या खास बात है? आपने जो समय सार लिखा है, प्रमत्त नथी अप्रमत्त नथी ज्ञायक एक भाव छे, ये जो आप भरत क्षेत्र को संदेश दे के आए हो, क्या गजब काम किया है। ऐसे वो देव ने कितना महात्म्य व्यक्त, अरे जब यहाँ समय सार मिला तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे, ऐसा उद्गार उनके हृदय में आया, तो साक्षात वो जीव से मिलेंगे तो क्या क्या भाव नहीं आया होगा। अपन इसका आनंद ले सकते, पुण्य भी बहुत विशुद्धि बांध सकते, इससे बहुत पुण्य बंदे भी बांध सकते हैं। देखो पर्यायनी भक्ति नो अर्थ लक्ष्य द्रव्य ऊपर छे। देखो पर्यायनी भक्ति इटले पर्याय रूप भक्ति, समझ में आया, भक्ति पर्याय है ना, तो पर्याय रूप परिणमन होना यही भक्ति है। वो पर्याय को लक्ष्य में करके उसकी महिमा की जाती है, ऐसा नहीं है, गजब बात है। जब महिमा की बात आवे तब तो पर्याय से भी लक्ष्य छुड़ाया जाता है, है? एक समय नहीं पर्याय केवल ज्ञान, ये पण आत्मानु खरुं स्वरूप नथी, केम के एक समयवर्ती परिणाम छे अने ते निरपेक्ष नथी। क्या ये नियमसार शास्त्र यही है, उसकी 50वीं गाथा आप लोगों ने सुनी होगी दो चार महीने पहले, उसकी 50वीं गाथा, पूवोत्त सवल भावा परदव्वम परसहावम इदि हेयम, ये औदयिक भाव, छायोपसमिक भाव, औपसमिक भाव, छायिक भाव। छायिक भाव तो भगवान को बोलते, भगवान के भाव होते छायिक भाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये छायिक भाव है। पर ये परद्रव्य है, गजब बात है, परद्रव्य है वो तो आत्मा की पर्याय है। पर जैसे परद्रव्य के लक्ष्य से आत्मानुभूति नहीं होती, वैसे छायिक भाव के लक्ष्य से भी आत्मानुभूति नहीं होती। इसलिए छायिक भाव करता अनंत गुणी महिमा पोतानी छे, पोते आत्मा त्रकाली छे, हूं छायिक भाव नथी। किसी सम्यक दृष्टि से पूछो आप कौन है, तो व्यवहार की भाषा में तो कई जवाब आएंगे, अपना नाम भी बताएगा, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पंडित हूं, ऐसा भी बोलेगा सम्यक दृष्टि। कोई बच्चे के स्कूल में जाए तो बोलेगा मैं इसका फादर हूं, ऐसा भी बोलेगा, है? और पर्याय की अपेक्षा बोलेगा तो सम्यक दृष्टिपूर्ण, ये जवाब नहीं चाहिए हमें। तो आत्मा आपका अभिप्राय क्या है ये बताइए। फिर मैं तो भगवान आत्मा क्या, सम्यक दृष्टि जो वो युगल जी ने लिखा ना, सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए भी जगह खाली नहीं है। सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। सम्यक दर्शन की मंगल बस्ती में ध्रुव बसता है। मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, ऐसी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन। इसको गुरुदेव ने यहां साथ में रखा। लक्ष्य द्रव्य ऊपर छे, अंतर्मुख है ना, परिणाम अंतर्मुख है ना, ते परिणामनी भक्ति नो एनो अर्थ द्रव्य ऊपर लक्ष्य छे। इसका नाम वास्तव में भक्ति है। अभी उसके नीचे वाली भी तीन पंक्तियां हैं इसी पैराग्राफ में। आवी बात, अभी गुरुदेव ने एक सामने वाले की तरफ से प्रश्न उठाया, त्यारे न करूं, ऐसा है इसमें है, देखो, त्यारे न करूं। तो सामने वाला पूछता है तो ये यात्रा वात्रा ये पुण्य तो बंधनु कारण छे, रखड़वानु कारण छे, तो नहीं करना। ये यही तो जगत को यहां ये गले में अटका हुआ है, इसलिए उसको पुण्य पाप से पाप धर्म है ये बात सुनने तैयार नहीं है आज दुनिया है। उसको तो क्रिया में पुण्य का, गुरुदेव ने एक जगह ये भी कहा है, पुण्य का भी ठिकाना नहीं, अकेली क्रिया में जो कोई क्रिया जड़ थी रहा, इसका क्या अर्थ है सोचो। बहुत गंभीर बात है। मुझे तो ये दो पंक्तियां में ऐसा लगता है श्रीमद जी ने पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार उतार करके रख दिया। कोई क्रिया जड़ थी रहा, शुष्क ज्ञान मां कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। क्रिया जड़ एटले शू, क्रिया करे ते, आत्मा तो क्रिया को करते ही नहीं है, तो क्रिया जड़ कैसे हो जाएगा। क्रिया थाय अने हूं आ क्रिया नो करता छू, तो क्रिया का करता पने का अभिप्राय एक बात। दूसरी ये शुभ क्रिया में धर्म मानने का अभिप्राय, इसका नाम है क्रिया जड़। कोई आदमी दो घंटा पूजा करता है और समझ लो अष्टानी का पर्व पालता है, आठ दिन एकासन करता है, दस लक्षण में दस दिन एकासन करता है, बाजार में कुछ खाता नहीं है, हरी भरी भी खाता नहीं है, जो भी सब करता है, तो क्रिया जड़ हो गया। वो क्रिया होने से क्रिया जड़ नहीं होता है। और कोई अकेले पांच मिनट के लिए आवे और फटाफट जल्दी जल्दी सुपर फास्ट स्पीड से कुछ भी बोल के और भाग जावे और संतुष्ट हो जावे, चलो मेरा एक काम तो हो गया, एक सिलेबस एक कोर्स तो पूरा, एक पाठ आज का हो गया, नहीं हुआ तो बड़ी ग्लानी होती, अरे ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, और हो गया तो चलो ये काम। मैं तो चाहे कितना भी बिजी हूं लेकिन ऑफिस जाने के पहले, दुकान जाने के पहले भले पांच मिनट खड़ा रहूं, लेकिन मंदिर जाए बिना नहीं रहता। एनु नाम क्रिया जड़ से, वो मंदिर जाता इसलिए क्रिया जड़ है, ऐसा नहीं है। वो मंदिर जाने की क्रिया में इतना संतुष्ट हो गया कि वो हो गया मेरा काम, और इससे ज्यादा क्या करें आखिर, भगवान को कितना टाइम दे रहे, भगवान तो नवरा बैठा छे वो फ्री बैठे है, अपने को कहा, उनको कहा धंधा व्यापार है, बिजी तो अपन लोग है ना। कोई क्रिया जड़ थी है, मर्म ज्ञानियों के हृदय में होता है, बिल्कुल परम सत्य बात है। आगम में तो शब्द लिखे हुए हैं, मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में होता है, तो क्रिया जड़ में कितना गहरा है। देखो एक पुण्य तो दो और ऊपर से लेता हूं थोड़ा बीच के पर, महाविदेह क्षेत्र में अनंत वार उपजियो छे। हमको इसी की महिमा आती है कि गुरुदेव विदेह क्षेत्र से आए, गुरुदेव विदेह क्षेत्र से आए। एक बात आप सबके विचार के लिए कहता हूं है? कोई रिएक्शन नहीं देना, पैदा भी नहीं करना, ये डिमोशन है कि प्रमोशन है। गुरुदेव ने खुद ही बता दिया, हम लोग खुद कई पर दबे पूछा उनको, छोटी उम्र थे तो गुरुदेव पूछने में मजा आती थी, तो गुरुदेव रस लेके बताते थे, साहब आप यहां कैसे आ गए, अरे थोड़ा परिणाम हमारा बिगड़ गया, इतना बोलते थे। एक और घटना इस संबंध में मैंने सुनी है, डायरेक्ट तो नहीं सुनी, ब्रह्मचारी बहनों ने बताई। पूज्य बेंसरी ने समझ लो ऐसा कभी बोला होगा, वो उनके ज्ञान वैभव में लिखा कि नहीं लिखा ये मुझे पता नहीं, कि वहां ऐसी चर्चा हुई उन लोगों के बीच में, जब कुंदकुंदाचार्य देव गए तो ऐसी बात हुई, देखो अभी भरत क्षेत्र में तो पंचम काल है, वहां तो हीनता है, यानी संघनन हीन है, तो दिगंबर दशा निर्ग्रंत दशा होना ये तो बड़ा कठिन है, तो अगर मान लो एक्सेप्शन में थोड़ा एक आध कपड़ा रख भी ले रहे तो क्या नुकसान। ऐसी अनुमोदना का परिणाम हुआ, उसके फल में वो संप्रदाय में चले गए। नहीं तो गुरुदेव दिगंबर में, जब दिगंबर धर्म की इतनी महिमा थी, वहां निर्ग्रंथों के दर्शन करते थे, श्रुत केवलियों के सानिध्य में रहते थे, तो आपके यहाँ क्यों आए, हमारे जबलपुर में आना चाहिए था ना गुरुदेव को, तो वहीं सोनगढ़ हो जाता। परिणाम के अनुसार, कुदरत परिणाम के अनुसार बंधाई ली छे, ऐसा वचनामृत में आता है, कुदरत परिणामों के अनुसार बंधी हुई है। कभी कभी मैं ये भी कल्पना करता हूँ, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, काश अगर गुरुदेव श्री मूल दिगंबर समाज में आए होते तो आज समाज का क्या स्वरूप होता, तो भगवान जाने क्या होता, लेकिन अभी यहाँ आए और इतनी बड़ी क्रांति हुई, यही बहुत बढ़िया हुआ। समझ में आया ना? देखो भगवान महाविरे मा तो तीर्थंकर नो कदी विरह होतो नथी, तो तीर्थंकर नी भक्ति अने एवा सेवा समो शरण मा अनंत बार करी छे, पण ए तो परद्रविनी सेवा, ए तो स्वभाव पुण्य छे। बोलो तीर्थंकर नी सेवा करी तो कैसे करी होगी सेवा, कोई छदमस्त हो रागी हो हमसे आप बोलेंगे साहब कोई काम हो तो बताना, हम कहें ये चीज वहां पर नहीं है तो ये भेज देना, गाड़ी भेज देना, ऐसा कर देना, तो हाँ भाई बराबर सेवा करी। अब इतराग 18 दोषों से रहित, न जन्म है न मरण है न तृषा है न क्षुधा है न राग है न द्वेष है, ऐसे वीतरागियों की क्या सेवा की जाए भैया। उसमें आता दौलत राम जी की स्तुति कल मैंने सुनाई थी, तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जैं सदीव, भव सागर में दुख छार वार, तारन को और न आप टार। तुम शासन से अमेय जीव, आपके शासन की सेवा करके अमेय मतलब अनंत, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड, तो आपके शासन की सेवा करके अनंत जीव शिव गए जाही और आगे जय हैं, शिव गए जाही जय हैं सदीव, भव सागर में दुख चार वार, ये भव समुद्र है, इसमें दुख रूपी खारा जल भरा हुआ है, समुद्र में जल होता है तो दुख ही इस भव समुद्र का जल है, तारन को और न आप टारी, आपके अलावा दूसरा कोई इससे पार उतारने वाला नहीं। तभी शासन से, शासन माने क्या होता है, खरे खर जो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है वो ही शासन है, जैन शासन कहते हैं स्थायी सामायिक कयों केवली जिन शासन है, तो भगवान का शासन माने भगवान के द्वारा बताया गया मुक्ति का मार्ग, इसी का नाम है शासन। देखो लोक में भी जो शासन किया जाता है, जैसे अभी फलाने गवर्नमेंट का शासन है, तो उसका अर्थ क्या है, वो आखिर जनता को ऑर्डर ही तो देते हैं, केवल ही भगवान उपदेश देते हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि भी इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना रेट ट्रेन का टिकट बढ़ जाएगा, इतना फ्लाइट का टिकट बढ़ जाएगा, इतना आपको छूट मिलेगी, ये कानून का उल्लंघन करोगे तो ये दंड होएगा, ये यही तो है ना शासन, और शासन कैसे कहते हैं, वास्तव में जीवन जीने का जो नियम है उसी का नाम शासन है, ऐसे दुखों से छूटने का जो विधान है जिसको शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, वो ही शासन है। ये रत्नत्रय यही जैन शासन है, है? और उसकी सेवा यानी उस रूप परिणमन होना, देखो उसमें भी परम भक्ति अधिकार है। वास्तव में पुराने कवियों के भजनों में, स्तवनों में, पाठों में इतना माल भरा है, इतना रहस्य भरा है कि कभी कभी बहुत विकल्प जाल खड़ा होता है कि ये सब चीजें बाहर आवे और कैसे अधिक से अधिक लोग इनको फॉलो करें। अभी जयपुर में वो है एक भाई गौरव सोगानी, वो पुराने कवियों के भजनों की बढ़िया सीडी उसने बनाई है, पुराने कवियों के भजन। एक तो जो एक सेठिया जी थे दीपचंद जी सेठिया, वो गुरुदेव के सोनगढ़ बहुत आते थे, सरदार शहर के थे, और बाद में तो थोड़ा फिर बंद भी हो गए, अभी तो उनके परिवार के लोग हैं। तो वो गुरुदेव को बहुत भजन सुनाया करते थे, वो राजस्थानी लैंग्वेज में। तो उनके पौत्र ने वो भजन जो गुरुदेव के सामने एक पुस्तक छपी थी हित पद संग्रह, उसमें वो सेठिया जी के बनाए हुए भजन थे। स्वयं परिणमति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, जो माल वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वो करता है, फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गवाते हो। एक दो प्रवचनों में तो गुरुदेव ने भी गाया, तो उन्होंने जो सीडी बनाई है उसमें वो गुरुदेव की आवाज में वो गीत रखा है जो गुरुदेव ने गाया हुआ है, फिर उन्हें खुद के आवाज में सेठिया जी के भजन गाए। तो पुराने कवियों की रचनाओं में बहुत माल भरा है। देखो रखड़वानु कारण छे, आवी बात त्यारे न करवूं। अभी उसका जवाब, ज्ञानी ने अशुभ थी बचवा शुभ भाव आवे छे। ये 1972 की बात है, तो मैंने गुरुदेव को एक गीत बना के सुनाया था, दो चार गीत सुनाए गुरुदेव को उस समय, है बड़ा डर लगता था लेकिन पैर कांपते थे बहुत, और पहले रामजी भाई से परमिशन लेनी पड़ती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई दूसरा कुछ गड़बड़ न कर दे, ये बड़ा विकल्प जाल। तो उसमें ये बात थी, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उसके ज्ञाता, दृष्टि तो ध्रुव में धरते राग रहित ध्रुव में रहते, धर्म कहे श्री जिन से समझा दो ना, आओ तुम्हें ध्रुव धाम बता दूं बतला दो ना। दो बच्चों का संवाद है, चिदानंद रस पान करा दूं अंतर के चैतन्य गगन में। देखो गगन और उसमें खान, क्या अंतर के चैतन्य गगन में शाश्वत सुख की खान दिखा दूं। तो मूल बात यह है, ये गुरुदेव के बहुत चतुराई भरी स्टाइल थी। एक पंडित जी आते थे धन्नालाल जी, गुरुदेव के बड़े भक्त अनुयायी प्रतिष्ठाचार थे, अपने यहां की कई प्रतिष्ठाएं धन्नालाल जी ने कर, परमागम मंदिर की प्रतिष्ठा धन्नालाल जी ने करवाई। तो वो हिंदी भाषी लोग तो उतना पूछ नहीं सकते थे ना गुरुदेव से, तो वो उन पब्लिक की तरफ से गुरुदेव से प्रश्न पूछते थे, ऐसा बोलते, तो महाराज आज आपके प्रवचन में ऐसा आया कि ये भगवान की भक्ति वगैरह से ये धर्म नहीं होता है, तो ये बात तो हमको स्वीकार है, पर जब तक हम वितराग नहीं हो जाएं तब तक पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो वो ये इस लैंग्वेज में जवाब चाहे, हाँ जब तक वितराग नहीं हो जाए तब तक करो ऐसा वो ये अपेक्षा रखते थे कि एक बार बोल तो दे सही, तो सारा विरोध मिट जाए हिंदी समाज का कि जब तक वितराग, अच्छा ऐसा है भी कि नहीं, ये टोडरमल जी ने लिखा है आश्रय तत्व संबंधी भूल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि सो ऐसी दशा न हो तब तक व्रत आदि करना, परंतु उसमें श्रद्धा ने ऐसा रखना कि ये बंद का कारण है। तो उठोडरमल जी ने लिखा गुरुदेव ऐसा बोलने तैयार नहीं, क्यों वो सामने वाले के पेट में क्या बैठा हुआ है गांठ ये जानते हैं। तो हमने जरा बोला कि हाँ हाँ करना चाहिए और ये झंडा लेके खड़ा हो जाएगा। अभी कांजी स्वामी ने अपना समझ लो अभिप्राय बदल दिया, अभी वो पुण्य करने के फेवर में चले गए, हमने उनको चेंज करवा दिया, ऐसा झंडा लेके खड़ा हुए। तो गुरुदेव क्या जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल समझ लो वस्तु स्वरूप की स्टाइल। भाई ज्यां सुधी वितराग दशा न थाय त्यां सुधी ज्ञानी ने पण शुभ भाव आव्या बिना रहतो नथी। आए बिना रहता नहीं है, यानी वो नहीं करे ये उसके हाथ में नहीं है। ये जो हम धमकी देते हैं ना कि तुम कहोगे कि धर्म नहीं है तो हम कल से मंदिर नहीं आएंगे, हम कल से पूजा नहीं करेंगे, हम दान नहीं देंगे, ये तेरे हाथ में नहीं है भाई। इसलिए दान देने की क्रिया जड़ की क्रिया है, तू उसका करता नहीं है। और वो भाव भी जिस समय जो परिणाम शुभाशुभ भाव दोनों, अरे तो शुभ को छोड़ने की बात करता, अशुभ को तो छोड़ के दिखा कम से कम है। तेरे कंट्रोल में अगर तेरे ही परिणाम हो गए तो अशुभ को तो छोड़ के दिखा कम से कम। तो अशुभ तो वो तो भूमिका अनुसार आए बिना रहता नहीं, और शुभ हम करते हैं, ऐसा कैसे चलेगा? ये लैंग्वेज रखी। देखो ज्ञानी ने अशुभ थी बचवा शुभ भाव आवे छे, पण छे बंध नु कारण बस ये। मोक्ष नु कारण ये नथी, मोक्ष नु कारण प्रभु चैतन्य निज परमात्म तत्व एनी दृष्टि ज्ञान ने रमणता ए मोक्ष नु कारण छे। फिर कोई श्रोता ने बोला बहुत ऊंची बात करते हैं। अरे दुकान बाजार में माल लेने जाते तो ऊंचा माल देखते कि नीचा माल देखते है? ये कोई बात हुई क्या? फिर उसके बाद में ये सब प्रतिमा वगैरह की चर्चा इसमें आई है। एक बहुत मार्मिक बात 210 पेज पर सबसे नीचे, ये प्रैक्टिकल व्यवहार में जो आज प्रॉब्लम होती है। देखो नीचे से तीसरी लाइन, एक अबज पति मारी पासे आवयो हतो, ओने अपना संस्मरण नैरवी का सुनाया। यहां से 400 लोग गए थे हैं, 30 लोगों का खर्चा नैरवी मंडल ने दिया था, जो उससे संबंधित लोग थे। मेरा नंबर 30वां था तो भी मैं नहीं गया था। मेरे को बाबू भाई ने और रतनलाल जी गंगवाल ने, इन दोनों ने बोला कि हम आपको ऑफर करते हैं कि आप आओ। मैंने कहा कि अगर मेरी जरूरत होती तो मेरा 30 के बाद 31वां होता, लेकिन जरूरत नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, इसलिए मैं नहीं गया। फिर अभी गया 5-6 साल पहले ना? तो एक अवशपति मारी पासे आयो हतो, ये एम कहे छे कि आ तमारू दिगंबर मंडल श्वेतांबर मंदिर मां जता नथी, दर्शन करता नथी, मैं कीधू तत्वज्ञान थया पछी व्यवहार केवो होय ए समझाए छे, एने बीजो उत्तर तो शू आपे। इसका मतलब समझा? आज हमारी नई पीढ़ी इस मामले में बहुत कंफ्यूज होती। हमारे कई दूर के रिश्तेदार लोग ऐसा, भैया बंबई में रहते हैं, बगल में अपना जैन मंदिर है, स्वर्ग श्वेतांबर है पर वो जैन मंदिर ही है, उसमें भी महावीर भगवान की मूर्ति है। समझ है? और अपना दिगंबर मंदिर तो बहुत दूर है, तो अभी मंदिर तो जाने ही, तो जो जैन मंदिर है तो फिर जाने में क्या हरकत है? ऐसे ऐसा तर्क जो है वो बहुत लोगों के मन में, खासकर जो बच्चे पाठशाला नहीं पढ़ते हैं, जिनको संस्कार नहीं है, जिनको देव गुरु धर्म की सच्ची पहचान नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम आती ख्याल में है। फिर उनसे कहोगे नहीं नहीं अपने को दिगंबर मंदिर में ही जाना, अभी दिगंबर में भी 20 पंथी में जाना कि नहीं जाना, तो जितने क्षेत्रों में आप दर्शन करने जाओगे तो वो प्रॉब्लम उधर खड़ी होती। दक्षिण में जाओ आपको अपना समझ लो, चेन्नई में अपना मंदिर है ख्याल में आया, पोन्नूर में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, इसके अलावा तो सब वही है, तो उसमें क्या हरकत है? फूल चढ़ाओ, तुम फूल को मत देखो, तुम तो भगवान को देखो। तो दृष्टि के विषय में से पर्याय को हटा सकते हो तो उधर दृष्टि के विषय में से फूल को नहीं हटा सकते थे। तो उस ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनसे द्वेष करते हो, वो और अपना पक्ष है, तो सारी दुनिया अपने मत को सभी अच्छा कहते हैं, क्या बताएं आखिर? देखो भाई अगर मान लो रोग दूर करना हो, आपको समझ लीजिए किसी को डायबिटीज है, सुनना ध्यान से, भले 5 मिनट है अभी, है वो डायबिटीज है लेकिन घर में माताजी को दूसरी बीमारी है, उनकी गोली पड़ी हुई है और अपनी डायबिटीज की गोली खत्म हो गई। समझ में आया? तो गोली है ना, अगर टेबलेट दवाई तो दवाई है, कोई भी खा लो उससे क्या फर्क पड़ता है, और अपनी माँ खा रही है तो अपने को खाने में क्या नुकसान है। भैया इसमें तुम्हें माँ की भक्ति करना है कि अपनी बीमारी को कंट्रोल करना है? असल में मंदिर जाने का प्रयोजन ही ख्याल में नहीं है, मूल समस्या तो इधर है, मंदिर जाने का प्रयोजन ख्याल में नहीं है। वो तो हमारी परंपरा है, हमारी क्रिया है, हमने नियम लिया है, पाठशाला में सिखाया गया है, इसलिए जाना है। अभी तो समय हो गया नहीं तो कल एक भोजन के उदाहरण से एक बात करूंगा मैं, अभी कह देता हूँ। भोजन करते हैं तो कितना तो अपनी भूख लगी है उतना करते, वो कितना परसेंट है, कितना जीव को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं वो उतना परसेंट, और कितना सामने वाले का आग्रह के दबाव में आके करते। ऐसे ये धार्मिक कार्यों का भोजन है तो कितना तो हमें अशुभ से बचने के लिए वितरागता के समागम में रहना है, हमको जरूरत है उसकी, तो मंदिर जाने की जरूरत आत्मा के लिए है, इसके लिए कितना परसेंट है उस क्रिया में। और मजा बहुत आता है, कितना अच्छा इसी हाल है, समझ में आया, कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कितनी शांति से प्रवचन होता है, प्रवचन में सब उदाहरण भी आते हैं, भजन भी आते हैं, भक्ति भी आते हैं, और यहाँ तो कंट्रोल बहुत है, नहीं तो कई जगह तो वो लगा देगा, क्या बोलते हैं, कांगो लगा देगा, डीजे लगा देगा, फलाना लगा देगा, और अच्छा गाने वाला आएगा, वो म्यूजिक चलाएगा, तो बच्चों को उसमें मजा आती है, उसका कितना परसेंट है स्वाद का, ख्याल में आया ना। दूसरा, तीसरा, लोगों को दिखाने का कितना परसेंट है, कि दूसरों को दिखाने का, समझ में आया। तो मंदिर जाने की जरूरत प्रयोजन क्या है इसका ख्याल नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ी होती। देखो भैया, जिन प्रतिमा जिन सार की, अगर निर्दोष प्रतिमा है तो वो ही जिनेन्द्र भगवान को रिप्रेजेंट करती है। मैं तो जब अमेरिका पहली बार में गया था 99 में 10 लक्षण में, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत क्वेश्चन क्या था, वो शिकागो में परिक्रमा में 4 भगवान दिगंबर और 20 भगवान श्वेतांबर, तो अपन तो सीधे निकल जावे और अपना दिगंबर भगवान ने दर्शन करें, तो उधर से क्वेश्चन बहुत आवे। इसमें से आया गुरुदेव ने जो बोला ना, इसके अनुसंधान में बोलता हूँ मैं, मेरे को बहाना मिल गया ये सब बातें कहने का, क्या कहना तो था ही लेकिन गुरुदेव ने सपोर्ट कर दिया है। तो लास्ट दिन निरंजन भाई के घर पे एक बड़ा उनके घर का पूजा उन्होंने रखी, तो सब लोगों को पता चले दिगंबर की पूजा कैसी होती है, फिर क्वेश्चन आंसर हुए। मैंने एक केवल तर्क उनको दिया, आप भी अपने बच्चों को समझाना अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, गांधी जी की मूर्ति बनाओ, और उस समय बिल क्लिंटन था वो वहां का प्रेसिडेंट, तो उसको ड्रेस बिल क्लिंटन वाली पहना देना, सूट पैंट टाई वगैरह और हैट वेट सब वैसा पहना देना, कोई मानेगा ये गांधी जी की, फेस गांधी जी का रखना, चश्मा गांधी जी का रखना, लकड़ी भी गांधी जी वाली रख देना, लेकिन सूट पैंट टाई पहना के स्टेच्यू बनाओ, तो ये गांधी जी का सम्मान है कि अपमान है, समझ में आया। इसी तरह एक बिल क्लिंटन की बनाओ और उसको आधी घुटने वाली धोती और खादी की चादर और वो लकड़ी वो लगा देना और लिख देना प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, तो आपके ऊपर मुकदमा चल जाएगा साहब, ख्याल में आया ना, ये अपमान है उसका। ऐसे जैसे समोसरण में भगवान होते हैं, अगर समोसरण में भगवान हार पहनते तो उनको हार पहना देना, समझ में आया। अपन में भी ऐसी भक्ति के अतिरिक्त में हो जाता। एक घटना सुना के मैं पूरा करता हूँ। जामनगर में पंच कल्याणक था और प्रसंगानुसार गुरुदेव श्री की जयंती भी उसमें पड़ गई, हम उसमें थे, जतीश भाई थे, हमारी टीम थी, तो एक बहन को इतना भक्ति भाव उमड़ा, इतना भक्ति भाव उमड़ा कि वो हीरों का हार लेकर के आई और गुरुदेव का स्टेचू मंच पर रखा था, तो जन्म जयंती थी उस दिन, तो वो हार पहनाने लगी। अभी मुझे बड़ा विकल्प आया कि गुरुदेव ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा माई का लाल कोई पुण्यशाली हुई नहीं महिला जो गुरुदेव को हार पहनावे के माला पहनावे। एक बच्ची भी अगर नमस्कार करने लोग आवे ना, छोटे बच्चे को लेके आवे, गुरुदेव पूछते थे कि ये बालक है कि बालिका है, ख्याल में ऐसा पूछते थे। वो छोटी बच्ची भी उनका चरण स्पर्श नहीं करा सकते थे उसको, इतनी मर्यादा थी उनके ब्रह्मचर्य की, दृढ़ता और अखंडता, गजब बात है। अब वो बहन को कैसे मना करें, क्या करें? मैंने जतीश भाई को, मैंने कहा इनको समझाओ पहले, ये जो है ना, समझ लो अपने नायक उनको, भाई जी इसमें गुरुदेव की बहुत विराधना हो रही है, गुरुदेव का अपमान हो रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी ओरिजिनल लाइफ में कभी माला नहीं पहनी, श्रृंगार नहीं किया, जैसे गुरुदेव थे अपने दुपट्टा वाले और धोती वाले जो उनकी ड्रेस है वैसा रखो, ख्याल में आया। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा भाई जी, तो क्या करें? तो उनको, वो बहन को इधर बुलाओ। तो बुलाया तो बहन को समझाया कि देखो कोई महिला गुरुदेव को छूती नहीं थी कभी, ख्याल में आया ना, और कभी उनको किसी महिला ने हार नहीं पहना, महिला तो क्या पुरुष ने नहीं पहनाया है। तो अपने ऐसा करेंगे तो गुरुदेव का जो जीवन था वो लांछित होगा, तो नहीं पहनाना चाहिए। किस्मत से उसकी समझ में आ गया, तो उस दिन गुरुदेव बच गए, या अपनी भक्ति में विकृति आने से बच गई, समझ लो समझ में आया। समय हो गया है, मुझे यही पॉइंट खास आज ये भी बताना था। तो गुरुदेव ने चतुराई से जवाब दिया, तत्व ज्ञान होने के बाद कैसा व्यवहार होता है ये समझाया। और किसी ने तो मुझे एक और बात बताई थी कि गुरुदेव ने बोला आटलू तो विवेक होवू जोइए। अभी जाना वो विवेक है कि नहीं जाना वो विवेक है, ये तुम समझ लेना समझ में आया। तो भैया एक जहां वितराग देव हैं, वो वितराग देव के दर्शन ही उपादेय। एक दौलत राम जी का भजन है, आपका आग्रह है भक्ति का, दो मिनट उसका अर्थ बताता हूं। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करने से स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। बोलो इंद्रवदन जी चंद्रमा के समान जिनका मुख है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करने से स्वपर भेद विज्ञान हुआ। प्रगटी निज आन की पिछान, निज यानी पोते, आन माने पर, तो स्वपर की पिछान हुई है। निज आन की पिछान, ज्ञान भान की कला उदोत होत, ज्ञान रूपी सूर्य की किरण निकली, तो काम जामनी पलाई। पांच इंद्रियों की इच्छा रूपी जो रात्रि है वो नष्ट हो गई है। शाश्वत आनंद स्वाद पायो, शाश्वत अत्यंत, देखो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने का ये स्वरूप है, शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन सो विषाद, और जो मेरे दुख थे वो नष्ट हो गए। आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई, आन माने परद्रव्य, परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी नष्ट हो गई। साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की, अपना साध जो भगवान आत्मा अथवा सिद्ध दशा है उसकी साधना के लिए समाधि धारण की, और मोह व्याधि की उपाधि, मोह रूपी व्याधि की उपाधि को विराधि के उसका नाश करके आराधना सुहाई, आया था ना आराधना, आराधना सुहाई, ठीक है। धन दिन छिन, वाह, दिन भी धन्य है, क्षण ये भी धन्य है, धन दिन छिन आज सुगुनी, आज का दिन धन्य है कि जो मैंने चिंते जिन राज अभे, जो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन किया और चिंतन किया, स्वरूप का चिंतन किया। धन दिन चिन्ह आज सगुनी चिंते जिन राज अबे, सुधरो सब काज दौल अचल रुद्धि पाई। दौलत राम जी कहते हैं कि मेरे सारे काम संपन्न, काम तो थे ही नहीं, ये तो मेरे काम है, ये मान्यता थी वो नष्ट हो गई। तो इस तरह ये उत्कृष्टतम जिनेन्द्र दर्शन की स्तुति है। मेरा तो एक सजेशन है कि जैसे आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में कार्यक्रम वगैरह लिखा हुआ है, तो आप इसको भी टाइप करवा के समझ लो एक आध दो घंटे जब सब कार्यक्रम हो जाए तो खाली टाइम पर रखें, तो कोई भी नए लोग आवे तो वो कम से कम उसको पढ़ के कुछ तो बोलें कम से कम। अभी आप रिपीट करेंगे, मैं आधी आधी पंक्ति बोलूंगा, मुखड़ा पूरा बोलूंगा और जो बीच का है वो आधा बोलूंगा। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवान की, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन प्रगति निज आन की, प्रगति पिछान ज्ञान भान की, पिछान कला उदोत होत काम जामनी पलाई, कला उदोत होत काम मनी पलाई, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन शाश्वत आनंद स्वाद पायो विनस्यो विषाद, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई,
आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना नसाई,
निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई,
निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई,
साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की,
साधी निज साध की समाधि मोह व्याधि की,
उपाधि को विराधि के आराधना सुहाई,
उपाधि के विराधि के आराधना सुहाई,
निरखत निज चंद्र वदन सुभद सुरुचि आई,
निरखी चंद्र वदन सुरुचि सुरभि आई,
धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे,
धन दिन छिन आज सुगुनि चिंते जिन राज अबे,
सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई,
सुधरे सब काज दौल अचल रिद्धि पाई,
निरखत जिन चंद्र वदन स्वरूप सुरुचि आई,
निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई,
निरखत जिन चंद्र
अशरीरी।